ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली या पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा कहता है आप मेरे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों बना, क्यों है कि स्वयं भगवान हमारा भाग्य विधाता है, हमको टीचर बन के सृष्टि के आदि मध्य अंत का उसने ज्ञान दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, हमारे बुद्धि के कपाट खोल गए। और हमें कैसे ऊंचे से ऊंचा पद पाना है इस सृष्टि रंगमंच पर, जो हाईएस्ट स्टेटस है, हमको कैसे प्राप्त करना है उसका रास्ता बता दिया, क्या करना है। और जो उसमें अपने गुण हैं भगवान में, शिव बाबा में, वो हमको गुण अपने में धारण कैसे करने हैं उसका भी तरीका बता दिया। देखो सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, आप जानते हैं सतयुग इस संगम युग की प्रारब्ध है। जो अभी हम संगम पर पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध हमको सतयुग त्रेता युग दो युग की 21 जन्मों की मिलती है, और साथ साथ उसका असर सारे कल्प चलता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई यहां का पुरुषार्थ का फल है वहां कोई, ना भक्ति की मेहनत है ना कोई, और कोई कार्य भी करते हैं एज ए हॉबी, कोई ना कुछ तो करते होंगे, बिजी रहते होंगे, एज ए हॉबी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप करो। जैसे यहां देखो दफ्तर जाएंगे तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना, तो जॉब करना पड़ता है, कोई भी कार्य हो, लेकिन वहां पर ऐसी कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती वो नहीं है। हाँ हॉबी, एज ए हॉबी आप काम करो, खेती भी होगी, सब कार्य होंगे, लेकिन एज ए हॉबी खुशी खुशी सब काम होता है। तो सत्युग में कोई पुरुषार्थ नहीं, त्रेता में भी नहीं, थोड़ा सा कम असर पड़ता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं। द्वापर में हम क्या करते हैं, भगवान को थोड़ा दुखी होते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, भगवान को याद करते हैं, और पहले भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन ना जानते हुए यानी है कौन परमात्मा, मन ढूंढना, माने अगर आपकी कोई चीज खो गई है तो उसको आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। मानो किसी को सुई खोई गई मिसाल, तो उसको ढूंढ रहा है तो वो मिल जाएगी ना वो तो, लेकिन हमें ये पता नहीं होता खो क्या गया है उस वक्त, ये भी मालूम नहीं ईश्वर है कौन, भगवान है कौन, बस साक्षात्कार हुआ, मंदिर बना दिए, ये क्या, लेकिन यही ईश्वर है किसी को मालूम नहीं होता। तो द्वापर में ढूंढने का भटकने का शुरू होता है कार्य, करते 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 जब संगम आता है, जब कलयुग का घोर हो जाता है, तब हमें बाबा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, ज्ञान देता है, अपना परिचय देता है, अपने घर का परिचय देता है, सब हम कौन है रिलेशंस वो भी परिचय देता है, और अब क्या टाइम चल रहा उसका भी परिचय देता है और क्या आने वाला उसका भी परिचय देता है। सारा परिचय हमको वो बाबा आकर के देता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, किसे पूछो सृष्टि चक्कर कितने वर्ष का है, सारी बातें सुनाता है और हमको कैसे उससे याद करना है, योग लगाना है वो सिखाता है और उससे शक्ति कैसे लेनी ये भी सिखाता है। हर एक बात सिखाता है, दैवी गुणों की धारणा कराता है, क्या दैवी गुण है वो बताता है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या, उसकी कर्मों की गहन गति बताता है। ये सारा हमको ज्ञान मिलता है और हम फिर पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैं अनुभव थोड़ा सुनाऊंगा कैसे हम इस ज्ञान में आए। आज से लगभग 60 साल पहले हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जब ये ज्ञान मिला, थोड़ा डिस्कशन करने के बाद ज्ञान मिला कि आप आत्मा हो। भले हम सब भारतवासी तो जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, ये लगभग जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्मा या हिंदू धर्म जिसे कहती है वो आत्मा को तो मानते ही है, हम भी मानते थे। हम पढ़ते थे तो जब ये कहा कि आप आत्मा हो, ये पहला लेसन मिला, तो हमने कहा हम तो आत्मा नहीं है। व्हाट इज द प्रूफ, क्या है, ये तो शरीर है, मशीनरी है, उसमें कोई जब पुर्जा फेल होगा खत्म हो जाएगा, कोई आत्मा की कोई दिखती तो कुछ है नहीं। बहुत दिन तक बात चलती रही, लेकिन एक दिन उस हमारे भाई थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा आप आज मान लो कि आप आत्मा है। अंदर से हम मानते थे कि आत्मा है, पर हमने कहा यस आई एम सोल। देखो आपको मालूम हो पहले पहले साकार बाबा ने भी आत्मा का ही ज्ञान दिया, उसमें परमात्मा की बात नहीं थी, हम सब आत्मा है। यही बाबा ने, जो हमारी बहनें दादियां भी हैं बहनें सुनाती हैं कि पहले पहले आत्मा पर ही ज्ञान बाबा सुनाते थे और वो सुनते सुनते साक्षात्कार में चले जाती थी बहनें वो। तो हमने कहा ठीक है कि आज हम मानते हैं कि हम आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पर इतना बोलना था, हम बताएं आपको, इतना कहना था कि मैं आत्मा हूं, उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी, सब बातें विद इन वन डे बदल गई, दृष्टि वृत्ति और सारा स्वभाव, यानी सात्विकता आनी शुरू होगी, प्योरिटी आनी शुरू होगी इसी एक बात से ही। और देखो जैसे बाबा ने भी, हम सुनते हैं बाबा की हिस्ट्री, उसमें लिखा बाबा लिखते थे आई एम, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, राधा भी आत्मा है, यशोदा भी आत्मा है, जो उनकी युगल थी, सबको आत्मा आत्मा और मैं भी आत्मा हूं। बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी, ऐसा हिस्ट्री उनके आता है। तो हमने भी, हमें तो नहीं मालूम था, हमने खूब लिखा आई एम सोल नॉट बॉडी, बहुत लिखा, बहुत लिखा, अपने को देह अभिमान से छुटाने के लिए, देह अभिमान ना आए, बॉडी कॉन्शियसनेस जो सारे बुराइयों की सारे विकारों की जड़ है उससे दूर चले जाए, वो खत्म हो जाए, इसके लिए खूब लिखा, खुद जो जगह मिलती थी लिखते आई एम सोल नॉट। तो बड़ा चेंज आया, अंतर्मुखता हो गई, खुशी आ गई, शांति आ गई, आनंद आ गया, केवल इसी एक ही पॉइंट से। तो जिस भाई ने कहा था, सुनाया, जिससे सुना था ज्ञान, मैं कहा अभी हमें और सुनाओ, तो बहुत आनंददायक ज्ञान है, आनंददायक बात है ये। फिर उन्होंने सुनाया परमात्मा शिव है, अब बताइए, पहले भी हम भगवान को मानते थे, मंदिरों में जाके पूजा करते थे, एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करते थे, लेकिन कौन है भगवान किसी को पता नहीं। आज भी पूछो शिवलिंग क्या है, लोग क्या बोलते हैं, किसी को अनुभव, किसी को पता ही नहीं इस बात का, परमात्मा ही शिव है, शिव बाबा है, परमात्मा है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, परम धाम क्या है, ये सब बातें सुन के बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे से पूछा था, मैं रशिया गया था, कि आपका व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, तो मैंने जवाब दिया हमारे तीन प्रकार के हैप्पी और हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, हम हैप्पी भी थे, हैप्पियर भी बने और हैप्पीएस्ट भी बने। तो मैंने कहा ये जो समय था जब हमें ज्ञान मिला, इतना वंडरफुल ज्ञान मिला, राम कौन है, कृष्ण कौन है, सारी बातें जो मिली है, रावण कौन है बताओ, उसके बारे में दुनिया क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं। अभी देखो कुछ दिन पहले मुरली में कितनी वंडरफुल बात आई, आप लोगों ने नोट की होगी। बाबा ने कहा रामायण पूरी कब होगी, बोलो, सुना मुरली में था, रावण राज पूरा कब होगा, बोलो, जब महाभारत होगी। ये बाबा ने कहा, देखो कितनी जबरदस्त अथॉरिटी की बात है कि रामायण तब, रावण राज तब खत्म होगा, ये रामायण तब पूरी होगी जब महाभारत होगी। लोग दुनिया वाले महाभारत क्या मानते हैं, महाभारत द्वापर में हुई, रामायण त्रेता में हुई, ऐसे कहते ना, वो रावण राज था, ये था, वो था, कितनी बातें हैं, कितनी हम बातें सुनते थे। तो यहां बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, रामायण और महाभारत का बड़ा कनेक्शन है। जब महाभारत होगी तो रावण राज खत्म होगा, तो सत्युग आएगा, अयोध्या में चलेंगे। तो ये ऐसी ऐसी बातें नई नई सुन के बुद्धि तो खुल गई हमारी बहुत, क्योंकि हमने अपने भागवत रामायण बहुत पढ़ा हुआ था छोटे बचपन से, दस साल की एज में हमारे लोग एक फादर बहुत सुनाते थे, तो ये सुना बहुत खुशी हुई, बहुत मैंने कहा दिमाग खुल गया, कपाट खुल गए, बहुत आनंद आ गया। दैट वॉज माई हैप्पी डे, खुशी का दिन था। आप भी जब आपने ज्ञान सुना होगा, प्रदर्शनी देखी होगी और कुछ, जैसे भी आपको ज्ञान मिला, मैं समझता हूँ आपको बहुत खुशी हुई होगी। खुशी हुई कि नहीं, क्या ख्याल है, अवश्य खुशी होगी, होगी बहुत मजा आया होगा। हम बताएं आपको ऐसा ऊंचा ज्ञान, एकदम कैसा ज्ञान है ये, देखो वंडरफुल ज्ञान है, एक्सपीरियंसेबल ज्ञान है, रैशनल है, कोई छोटी भी भक्ति का अंश इसके अंदर नहीं है, रैशनल, वंडरफुल, एक्सपीरियंसेबल और साइंटिफिक है। कोई वो भक्ति वो ऐसा कुछ अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है, साइंटिफिक। तो ये हमने ज्ञान सुन के बड़ी खुशी, मैंने उस भाई से कहा भाई आपने ये ज्ञान सुना कहां से, हम उनको तो मिलाओ। उनने कहा जी आप जाओ बाबा मामा से मिलने के लिए, दिल्ली में आए हुए थे उस वक्त, बाबा सर्दियों में दिल्ली में आते थे, बाबा मामा दोनों आते थे, तो हम मिलने के लिए चले गए। जब बाबा मामा के सामने आए गए, उनकी कैसे बने बाबा मामा, बाबा समान उनकी पर्सनैलिटी इतनी बिविचिंग थी, इन उनकी वो देख करके ही लगता था ये उस वक्त ये फरिश्ते बैठे हुए, ऐसा लगता था, शाइनिंग फेस था और विचिंग आईज और दृष्टि, ये देख करके बड़ा लवली उनका हमारे से बोलना, उनको वो देख करके हमें लगा कि उसी वक्त लगा कि ये हमारे अलौकिक क्या है, हमारे ही माता पिता है। उस वक्त ऐसी फीलिंग आई कि रियल में जो माता पिता है हमारे यही हैं। तो दैट वॉज माई हैप्पियर डे, यानी एक बहुत खुशी हुई उसको बाबा मामा से मिलकर के हमारे जो है ये अपने जैसे होता है, अपनत्व के बाबा से मिले, मम्मा से मिले, वहां पर उस गोद लेते हैं बाबा मामा, अपनी गोद में लेते थे, थप्त पाते थे, हमारे आंसू बह रहे थे। बाबा कहते आप तो मिल लिए ना कल, पहले 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हो, टोली जब खिलाई वो क्या? हर प्रकार से जैसे अपने बाबा मामा ने अपने बच्चे को, जैसे बच्चों से मिलते हैं इतने समय के बाद, तो कितना प्यार होता है। हमारे पास एक आए थे भाई, कहते और सब बातें, यहां पर आए थे किसी फंक्शन में, और सब बातें ठीक है, कि आप इतनी सेवा क्यों करते हो, हमें पूछा, और सब हमें ट्रेन से लाए यहां, हम आ गए, हमें कमरा दिया, गर्म पानी, ठंडा पानी, खाना, ये वो सब, इतनी सेवा और जगह तो होती नहीं, आप बड़ी सेवा करते हैं। मैंने उनसे कहा भाई देखो, अगर कोई किसी का भाई 50 साल के बाद मिले, मिसाल अचानक मिल जाए, तो क्या आप खुश नहीं होंगे उससे, कितनी खुशी आपको, कितनी सेवा करोगे आप। तो मैंने कहा आप हमें 5000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं, इसीलिए हम आपको देख के बड़े खुश होते हैं और आपकी सेवा करते हैं, ताकि आप हमारे परिवार में जमे रहे, फिर न चले जाए। तो वो कहता बात तो रही थी, देखिए कितनी, आप बताइए आप आते। अब मैं एक दफा हरिद्वार चला गया, वो रामदेव जी के दफ्तर, वो वहां पर वो वहां के एडिटर ने बुलाया था, हम गए, गाड़ी खड़ते ही पहले पर्ची कट गई। आप बताओ और यहाँ देखिए अपना परिवार है, अपना घर है, अपना ऐसा लगता है अपने घर में ही हम आए। तो मैं बता रहा था बाबा मामा से मिलने के बाद मैंने उसको कहा दिस वॉज माई हैप्पियर डे, ये ठीक है। तो बाबा मामा ने क्या कहा, बाबा से मिले, मम्मा से मिले, बाबा ने कहा बच्चे जब पूछा, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, पहला साल था अभी हमारा, तो 57 की बात है, बाबा ने पता, देखो क्या बाबा का क्या वरदान था, देखो बाबा ने कहा बच्चे आप सुन के आश्चर्य कहेंगे, क्योंकि ये एक हफ्ता 15 दिन ही ज्ञान में हुए थे, बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलो कौन बोल रहा है, हुआ स्पीकिंग, यानी भृगु ऋषि जो मेरे मुझ आत्मा के आदि मध्य अंत को जानता है, उनके मुख से निकला बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें तो वैराग था ही ध्यान सुन करके, बहुत वैराग था भाई, क्या दुनिया तो सामने विनाश करा है, क्या करेंगे पढ़ पढ़ के, अब तो सेवा में लग जाना चाहिए, लोगों को संदेश देना चाहिए, बाबा की मूल्य तो ऐसे आती थी। तो हमने कहा ठीक है बाबा, आप कहते तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे, हम तो सेवा में लग जाएंगे। लेकिन फिर हमने एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, और बाबा ने फिर इंग्लिश में जवाब दिया हमको, तो मैं थोड़ा सुना देता हूँ, वो याद है। बाबा को मैंने लिखा, हम इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन, ए कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग ऑफ द गोल्डन एज, जो सचयुगी बहुत बड़ा महल आप बना रहे हैं उसमें मैं भी एक छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूँ। फिर मैंने लिखा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन कमिंग टू गोल्डन एज, ये लिखा। फिर लिखा आई डोंट वॉन्ट टू बी ए पार्ट डिजाइन मशीनरी, बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द ब्रह्मा कुमारी ऑफ दिस, हम इसका एक पुर्जा बनना चाहते हैं। तो बाबा ने फौरन दो दिन में जवाब लिखा, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू यूर, इंग्लिश में जवाब दिया बाबा ने, गिव दिस नॉलेज टू यूर पेरेंट्स एंड टू को इंजीनियर्स। ये बाबा के पहले पहला लेटर बाबा का शब्द थे, लेटर पाके बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया, भगवान कौन लिख रहा है, गॉड हिमसेल्फ, रियली ही वॉज राइटिंग टू मी दैट के ऐसे करो ऐसे करो। और जब तब से, भले और बातों में हम ढीले होंगे, भाई 6-8 घंटे योग करो नहीं कर सके होंगे या ये और बातों में, लेकिन जो बाबा ने लिखा हमने उसको पूर्ण करने की कोशिश की। तभी से हमने क्या किया, अपने इंजीनियर्स को उनको ज्ञान देना शुरू किया, एकदम जीवन बदल गया। पिक्चर देखना, बहुत पिक्चर देखते थे, पिक्चर देखना बंद हो गया, लोगों से अंतर्मुखी हो गए, लोग कहते थे हमारे स्टूडेंट्स क्या, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, आइदर यू हैव बिकम ए सेंट और यू हैव बिकम ए बीस्ट, बोथ लिव इन जंगल। अब मैंने कहा नहीं, हम तो भाई बीस्ट तो नहीं है, आई एम बिकमिंग ए सेंट, हम सेंट बनते जा रहे हैं। बहुतों को ज्ञान दिया, एक उन दिनों में मैगजीन निकलती थी त्रिमूर्ति, बड़ी मोटी किताब होती थी, 3-4 महीने में छपती एक दफा, उसमें सारा बाबा का ज्ञान होता था। एक पेज खोलोगे परमात्मा सर्वव्यापिनी, दूसरा खोलोगे परमात्मा वो पतित पावनी गंगा नी, ये सारी बातें उसमें होती थी, 84 लाख जूनिया नी, ये हम उनको सबको बांटते थे, जो वो हमारे मित्र थे को इंजीनियर थे, वो पढ़ते थे, कहते ये क्या आपकी ज्ञान है, ये बिल्कुल अपोजिट ज्ञान है, दुनिया में तो ऐसा है कुछ नहीं। आप फिर हम उनको इधर नशे से समझाते थे, वो समझ जाते थे, हमारे स्टूडेंट बन जाते थे, आप मानेंगे। तो हमारे अपने जो कमरा था हॉस्टल का, उसमें एक क्लास शुरू कर दी, फिर वार्डन ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, फिर हॉस्टल छोड़ दिया, फिर बाहर में मकान लिया, अपनी सेवा की। इस प्रकार से भिन्न भिन्न पटियाले में हम पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेवा शुरू होगी। तभी से बाबा का बनते ही हम बाबा की सेवा में लग गए, और पढ़ाई वढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं दिया, चलते रहे और आगे पढ़ते रहे। बाबा ने कहा पढ़ो, तो पढ़ते भी रहे, थोड़ा बहुत जाना, जाएंगे कॉलेज में एक हफ्ते के बाद जाएंगे, क्या कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा है, कभी भोग है। उन दिनों में 2 दफा भोग लगता था, संडे को भी लगता था, गुरुवार को भी। ये है प्रदर्शनी है, कुछ है, सारा हमारा ध्यान इसमें था। जाते थे तो लोग हंसते थे, देखो जी कौन आ गया हफ्ते के बाद पढ़ाई पढ़ने, मतलब कहने का कोई डर नहीं था। टोटली आई वॉज फ्री टू डू दिस सर्विस करते रहे। तो फिर हमने बाबा ने कहा था अपने लौकिक पेरेंट्स को ज्ञान दो, तो हम लौकिक घर में गए। हमारे लौकिक पिताजी तो बड़े धार्मिक थे, बड़ी कथा सुनाते थे लोगों को, वो जिम्मेदार भी थे और वो जा जाके मल्ले मल्ले में अपनी कथा भी सुनाते थे, भागवत और कुछ नहीं। तो उनको ज्ञान सुनाया, कहते ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। और माता जी को, पिताजी को और आसपास जो भी थे हमारे सबको सुनाया। उन्होंने कहा जी मैं ज्ञान तो मानता हूं, ठीक है भगवान भी आ चुका हो सकता है, ठीक आए, लेकिन मैं एक शर्त है मेरी। हमारे लौकिक फादर ने कहा क्या शर्त है, कि शिव बाबा मुझे आबा कुछ दिखा दे, कोई साक्षात्कार करा दे, तब मैं मानूंगा। मैंने कहा हमें तो हुआ नहीं साक्षात्कार, आपको कैसे होगा, आप अभी यहां बैठे हैं, ना बाबा से मिले, ना मम्मा से मिले, ना आप किसी दादी से मिले, यहां कैसे होगा। फिर भी हम जैसे गुरुवार को भोग लगाते हैं, हम लगाते थे, एक दिन गुरुवार को साहब बैठे थे लगा रहे थे, वो उठ के खड़े हो गए, पांच सात दस बैठे थे खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश, ये करते हैं ये करते हैं, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, कुछ ध्यान में जा रहे हैं। तो वो बहुत थोड़ी देर के बाद वो बड़े उदास होकर नीचे उतरे। मैं पूछा क्या है पिताजी, क्या आपको क्या हुआ, कहता मैं ऊपर कहीं क्या रियलिटी है, इट इज रियल। ऊपर गया तो श्री कृष्ण बहुत छोटा बच्चा मुझे देखने में आया। वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, बहुत भगत थे, क्योंकि बाबा भक्त वत्सलम भी तो है, भक्तों की कामना भी पूर्ण करते हैं बाबा तो। लेकिन मैं बच्चों को पकड़ता हूँ, वो यहां जाता हूं तो यहां चले जाता है, यहां जाता हूं तो यहां चले जाता है, मेरे हाथ में नहीं आया। मैंने कहा क्यों हाथ में नहीं आया, फिर कहता है आपके जो बाबा हैं ये मेरे सामने आए और मुझे कहते हैं बच्चे अगर तुम धारणाओं पर चलोगे और इस निश्चय बुद्धि हो गए तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। उसने कहा ठीक है, वो थे 50-60 साल के तो थे ही, वो कितने 55 साल के, तो सब वो अपनी धारणा शुरू कर दी, पवित्रता खान पान ये वो लसन प्यार सब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। कहा ठीक है, मैं फिर अगली बार हम अगले गुरुवार को भोग लगाया, फिर वो ध्यान में चले गए, ध्यान में गए, श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बड़े आंसू बहाए, इतना उनको खुशी हुई कि बात मत पूछिए आप। और वो सारे आसपास के लोग भी गए भगत जी को क्या हो गया, वो ध्यान में जाते सब हो गया। उसको देखकर सारा परिवार हमारा ज्ञान में आ गया, जैसे लौकिक हम बताएं हमारे लौकिक परिवार पूरा ज्ञान में आ गया, माता जी पिताजी भाई बहन सब ज्ञान को मानना शुरू कर दिया। तो हमें बाबा ने जो वरदान दिया था बच्चे अपने लौकिक घर में जा करके पेरेंट्स को ज्ञान दो, तो पूरा परिवार अभी तक, माता पिता तो चले गए, बाकी तीन चार भाई हैं वो है बहन है, सब इस ज्ञान में लगभग समर्पण टाइप के चल रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई, तो बाबा को मैंने लिखा, बाबा क्योंकि इसलिए लिखा कि मुझे बड़ी खुशी भाई हमारे लौकिक फादर ध्यान में गए। बाबा को पत्र लिखा, बाबा ने कहा बच्चे मैंने भी बहुत ध्यान देखा है, बाबा ने कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया इसको साकार बाबा ने, क्योंकि ध्यान का पाठ पर कभी उल्टा भी हो जाता कई दफा बात हो जाती। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है मैंने भी बहुत ध्यान में देखा है, लेकिन आप मानेंगे हमारे लौकिक पिताजी को इतना ध्यान में जाते थे, और हम उनको कहें बाबा से पूछ के आओ, वो पूछ के आते थे, कोई बात हो छोटी मोटी भी आप बाबा से पूछ के आओ, ऐसा एक्यूरेट जवाब होता था। बिल्कुल पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, गुरुमुखी और उर्दू जानते थे और कुछ जानते नहीं थे, ऐसे अच्छे संदेश लाते थे, हमें तो बड़ी खुशी होती थी भाई ये संदेश लाओ वो संदेश लाते थे। अब जब बाबा मामा से मिले, बाबा मामा से इतने खुश हुए, यहाँ आए मधुबन में आए, और जब बाबा जब उन दिनों में बाबा जब बाहर जाते थे मम्मा होती थी मधुबन में, तो उनको मम्मा गद्दी पर बिठाकर कहती बाबा को भोग लगाओ मुख्य हाल में, हिस्ट्री हाल में। तो इस प्रकार से उनका पाठ खुलने से हमारा लौकिक पूरा परिवार भी ज्ञान में आ गया, और हम भी चलते कैसे न कैसे इंजीनियरिंग की स्टडी पास कर ली विदाउट एनी स्टडी, बगैर पढ़े लिख पढ़ाई किए, पता नहीं उन्होंने कैसे डिग्री पास कर दी पता नहीं लगा मुझे तो। और पास करके हम जब माता पिता जी के पास साथ हम मधुबन में आए, स्थान 61 की बात है 1961 आए, और बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये कोई तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी, تو کوئی درکار نہیں جاپ کرنے کی. آئی ٹیل یو بابا نے کہا بھگوان ہو واچ, کوئی جاپ مت, کوئی نہیں ہے. اس وقت بہت کم لوگ تھے, بہت کم تھے, ہزار بھی مشکل ہوں گے, ہزار دو ہزار ہوں گے. سارے انڈیا کی سنکھیا 1961 یا 57 کی بات ہے. تو بابا نے کہا بچے یہ تم, انہوں نے ہمیں بھیج دیا دلی میں, دلی بھیج دیا. براتا جگدیش جی کو جانتے ہیں آپ سبھی؟ جب جانتے ہاتھ کھڑا کرے, بہت کم جانتے ہیں. ہمارے براتا جگدیش جی جو کہ سب سے بڑے ہمارے ایشوری سیوا میں نمبر پہلے پہلے وہ اس گیان میں آئے, 54 میں یا 53 میں ایسے گیان میں آئے, جو ان کو بھی بابا نے سوئم اپنا ساتھی بنایا, سارا ان کو یعنی اپنا سپوکس مین بنایا, ان کو بہت ان سے سیوا لی. انہوں نے ہڈی ہڈی اس ایشوری سیوا میں لگا دی. جو 200 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, جو جتنا بھی کتابیں ہیں بکس ہیں ساری ان کی لکھی ہیں. وہ بہت بڑے رائٹر بھی تھے, سپیکر بھی تھے, بہت بدھیوان تھے اور بابا کے رائٹ ہینڈ تھے. ہم بتائیں ان کے ساتھ ہمیں رہنے کا موقع ملا, 3-4 سال رہے, بس سیوا کرتے رہے, سیکھتے رہے, سکھاتے رہے. وہ ان سے بھی بہت ہم نے گول سیکھے, بہت کچھ لیا. تو اس کے بعد ایک چترشالا بنی, وہ پردرشنی کا سیزن شروع ہوا تو ہم نے ایک چترشالا بنا لی دلی میں, اور آرٹسٹ امپلائی کر دیے اور چتر بنوانے شروع کر دیے بھن بھن پرکار کے. جو مرلی میں آتا ہے مرلی کو سن کر کے, اور وہ جو میگزین میں چھپتا تھا اس کو دیکھ کر کے چترشالا بنی. تو ہم ایک دیکھو بابا کیسے بابا وہ راستہ کھولتا ہے. ہم 20 چتروں کا سیٹ لے کر کے بابا کے پاس آئے, ہسٹری ہال بن چکا تھا, بابا اور دیدی تھے, انہوں نے دیکھا اور بابا نے پھر اپنے کمرے میں بلایا مجھے. بابا کو اچھا لگا, کچھ کریکشن بھی دی, ڈائریکشن بھی دی اور انسٹرکشن بھی دی. تو بابا نے دیکھو کیا بلا کر کہا, میں نیچے بیٹھنے لگا. بابا نے کہا نہیں نہیں میرے ساتھ بیٹھو, گدی پر بیٹھو. میں تو چھوٹا بچہ بابا کا اور اپنے کو گدی کے ساتھ کیسے بیٹھوں, میں ہچکچانے لگا. بابا نے بٹھایا اپنے گدی کے ساتھ. دیکھو بابا نے کیا بولا, ہم سبھی کے لیے ہے وہ وردان. کوئی اگر چھوٹا بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی بھی آپ سمجھتے ہیں خوبی ہے, بابا ہمیں اس کو میگنیفائی کرنا چاہیے. بابا نے چھوٹی موٹی ہماری خوبی دیکھی, بھائی یہ کام کرا سکتا ہے, بابا نے بہت میگنیفائی کر کے وردان دیا. بابا نے کیا وردان دیا, بچے گدی پر بیٹھو, جو باپ کی گدی سو بچوں کی گدی. سنا اس کے آگے اور سنیے, یہاں بھی اور وہاں بھی. وہاں کہاں بولو, کہاں پر, گولڈن ایج میں. اگر آپ سب دیکھو بہنیں ہیں بھائی بیٹھے ہیں, کیا سمجھتے ہیں گھر کس کا ہے بولو, بابا کا ہے نا. وہ کس کی گدی ہے, بابا کی ہے. آپ اس کو سنبھالنے والے ہیں. اگر آپ ایسے سنبھالیں گے, بابا کا ہے میرا نہیں ہے, میں اس کا سنبھال رہا ہوں, چاہے سروس کرتے ہیں, چاہے اپنا گھر ہے, چاہے کچھ ہے, اگر آپ اس پرکار سے چلیں گے تو جو باپ کی گدی سو بچوں کی گدی. یہاں آپ یہاں بھی اور ستیگ میں بھی آپ اس گدی کے مالک بنے. تو ہم کو بھی ایسے کرنا ہے, میرا نہیں, کس کا ہے سارا, وہ کرا رہا ہوں. کہتے ہیں کیسے, ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم ابھی 11 نمبر بھون ہے, اب تو شفٹ ہو گیا, اتنی بڑی پرنٹنگ پریس ہے, اتنا کچھ ہے, یہاں گاؤں ہے, کچھ ملتا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لے ہم کہتے ہیں پچھلے 25 سال سے بنا کسی بریک کے پرنٹنگ ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. کون سنبھال رہا ہے, کون کروا رہا ہے, اوپر والا. ایک دفعہ کیا آپ دادی جی سے بیٹھے تھے, بڑی دادی پرکاش بنی. میں دادی میں تو بڑا بھولا بھالا بابا کا بچہ ہوں, یہ تو بڑے بڑے مہارتی ہیں, اسپیکر ہیں, یہ ہیں وہ ہے, دیکھو ہم تو بڑے سمپل ویکتی ہیں. دادی نے کہا یہ کیا ایک بھولے بالے ہو, اتنا بڑا کاروبار جو چل رہا ہے کہ ایسے چل رہا ہے کیا. میں نے کہا دادی وہ تو اوپر والا چلا رہا ہے. کہتے یہی انٹیلیجنٹ ہے, یہی انٹیلیجنس ہے کہ یہ سمجھنا کہ اوپر والا شیو بابا کرا رہا ہے. سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے. تو ہم بھی سمجھیں جو بھی ہم کرتے ہیں, میں نہیں, کون کرن کراون ہار, وہی کرا رہا ہے. یہ اپنا ہمیشہ یاد, بابا بھی یاد رہے گا, ساتھ میں ہم اپرام بھی رہیں گے, ایسے بھی رہیں گے. اس پرکار سے چلتے رہے, بابا نے بھیج دیا وہاں پر چترشالا بنی, تو بابا نے جب وردان دیا اس وردان سے بہت سیوا ہوئی, سینکڑوں پردرشنیاں بنی, میلے بنے, میوزیم بنے, کیا کیا چیزیں بنی, بہت بابا نے جو یہ بات کہی اس سے بہت سیوا ہوئی. تو دیکھو بابا کے ایک وردان سے آپ ابھی تو ہمارے پرانے بیٹھے ہوں گے, بہت جگہ جگہ دلی میں ساری ہمارے جو فارن تک چتر بن کے اس چترشالا سے گئے بابا کے اس وردان سے. تو بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا تو وہ جو میرا ہیپیسٹ ڈے کون سا تھا, جس دن بابا نے یہ وردان دیا اور بابا نے اپنی سیوا میں لگا دیا, دیٹ واز مائی ہیپیسٹ ڈے. تو آپ بھی ہم بھی سب مل کر کے یعنی بابا کے جو وردان ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے سیوا میں لگے رہنا چاہیے. تو دوسرا یہ دیکھی میں یہ دیکھتا تھا بابا کیسے دھیرے 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 کرتے کرتے فرشتہ بنتے چلے جا رہے تھے, فرشتہ بنتے چلے جا رہے, یہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ دیکھو جب بابا کو کیسے انہیں کیسے بنے وہ ہم ان کو دیکھتے تھے. جب بابا کو کیا ہوا, پہلے پہلے ساکھیات کار ہوئے دو, آپ کو معلوم ہو ایک وناش کا ساکھیات کار ہوا, ایک ستھاپنا کا ساکھیات کار ہوا. یہ آپ جو مرلی پڑھیں گے مرلی میں دو باتیں اوشیہ آئیں گی, وناش کا بھی بات آئے گی اور ستھاپنا کی بھی بات آئے گی. ہم بتائیں آپ سامنے ہمارا لکش کرا ہے, بابا کہیں گے وہ ستیہ کا وہ بننا ہم کو اونچ پد پانا ہے, اور کیسے بھی یہاں اس سرشٹی سے یعنی اس ادھر سے بیراگ آ کر کے وناش کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ستھاپنا کو بھی سامنے رکھنا ہے. جب بابا کو وناش اور ستھاپنا کا ساکھیات کار ہوا, بھائی جی کیسے سب بامب چھوٹ رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, مارا ماری ہو رہی ہے, خونریزی, اس سمے اتنے وہ جھنجھٹ جھگڑے نہیں تھے جتنے آج کل ہیں. وہ دیکھا تو بیراگ آ گیا, دوسرا دیکھا کہ وہ اوپر سے سٹار آتے ہیں اور کوئی پرنس بنتا ہے کوئی پرنسس بنتا ہے, یہ بھی ساکھیات کار ستھاپنا کا بھی ہوا. اس نے بابا نے کیا کیا پھر اس وقت بابا کو وراغ آ گیا, اس نے کیا کیا اپنا پورا تن من دھن جن سب کچھ اس ایشوری یگ کی ستھاپنا کی, اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا. اتنا بڑا کاروبار تھا ہم آپ کو بتائیں کہ کلکتہ میں اتنا بڑا یعنی جیولری کا بزنس تھا اور بامبے میں تھا اور سارے راجے رجواڑوں سے کنیکشن تھا, نیم اینڈ فیم بھی ختم کر دیا, سب راجے رجواڑوں سے کنیکشن بھی توڑ دیے, کچھ نہیں, بالکل اپنا پورا پریوار کو بھی گیان میں لائے, سب کچھ ماتاؤں کے ارپن کر دیا, ٹرسٹ بنایا, یہ ایک بہت بڑی بات تھی, سب کچھ فنش کر دیا. تو بابا نے مرلی میں کہا تھا میں نے ایسا کیا پرنتو کیوں کیا, آپ بتاؤ. بابا نے پھر جو خود جواب دیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, بولو بابا نے ایسا کیوں کیا, بولو کوئی بتائے گا؟ بابا نے سوئم ہی جواب دیا, بچے میں نے اس لیے کیا کہ انت میں مجھے کچھ بھی یاد نہ آئے. سن لو اور دیکھو جو بابا نے کیا, انت میں بابا کو سوئے شیو بابا کے اور کچھ یاد نہیں تھا. برہما بابا تو ایک ساکار میں تھے نا, ہیں تو بھلے ہم کہتے ہیں آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, پرنتو آدم خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے, ہم یہ بتائیں آپ کو. تو بابا نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ مجھے انت میں کچھ بھی یاد نہ آئے. جب ہم آپ ان کی ہسٹری سنے کیسے انہوں نے وہ کیا انتم جو سمے تھا, سوائے شیو بابا کے بابا کو کہا ہم کوئی ڈاکٹر کو بلائیں, بابا نے کہا نہیں میں تو سرجن کے ساتھ ہوں. یہ بابا نے بات انت تک آٹھ نو بجے ہوا, اس سے پہلے کچھ گھنٹے ان کے مکھ سے کیا نکل رہا تھا, امرت وانی گیان نکل رہا تھا. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ انت تک ان کے مکھ سے گیان امرت بہ رہا تھا. تو دیکھیے اس پرکار سے سوائے گیان گنگا کا تک خود ہی گیان ساگر تھے تو وہ بات تھی, اور مکھ سے گیان امرت نکل رہا ہے اور سوائے شیو بابا کو کچھ یاد اور کچھ یاد ہی نہیں ہے. وہ اپنا ہاتھ دادی کے ہاتھ میں دیا اور اڑ گئے. یہ ہے نا واسطہ میں دیکھا جو بابا نے شروع کیا تھا اسی پرکار سے وہ ایک دم کرماتیت فرشتہ بن گئے. ہم جب آتے تھے ملنے کے لیے بابا سے، بہت دفعہ ملے، بہت دفعہ ان سے ڈائریکشن لیتے تھے، بہت بات کرتے تھے. بابا کہتا بچے تم ہر ہفتے میرے پاس آؤ، ہر ہفتے دلی سے آؤ اور دلی پہ جاؤ، چتر فرماتے تھے یہ انسٹرکشن دے جاؤ، یہ کر جاؤ، اس پرکار بابا ہم کو کہتے تھے. تو ہم تو ہر ہفتے تو نہیں آ سکتے تھے کیونکہ 18 گھنٹے تو ٹرین میں لگتے تھے، ان دنوں میں ٹرینیں بھی ایسی تھی. پھر بھی بیچ بیچ میں آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے، بابا سے ڈائریکشن لیتے تھے، ہوتا رہتا تھا. اور اس پرکار سے بابا نے ہم بچوں کو آگے بڑھا کر کے یہاں تک بنایا. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، باپ سمان بننے کے لیے کیا پرشارتھ کرنا ہے. وہ بن گئے کرماتیت فرشتہ بن گئے اور ہماری انتظار کر رہے ہیں کہ تم بھی بنو، پھر ہم سب مل کر کے چلے پرم دھام. تو اب آپ بتاؤ آپ کہاں تک بنے ہیں، کرماتیت فرشتہ بن گئے، ابھی دیری ہے، کوئی فاصلہ ہے، بولو کتنا فاصلہ ہے، نزدیک پہنچ گئے کہ نہیں، ہاں یا نہ، پہنچ گئے نہیں پہنچے تو کب پہنچے گی، ٹائم تو نزدیک ہے. دیکھو ایک مجھے خوشی اور بھی ہوئی، جب چوتھی خوشی ہے نا، ہیپیسٹ بھی اور ہیپی، جو بابا نے کہا تھا نا سب کچھ سامنے آ رہا ہے. بابا نے کہا تھا کبھی کسی کی دبی رہے گی دھوڑ میں، کسی کی راجہ کھائے، ہو رہا نا یہ کیا نوٹ بندی کیا ہو رہا ہے، کروڑ پتی روڈ پتی آ جائیں گے سارے. بابا نے سوئم کہا تھا کئی دفعہ، جب ہم ان دنوں میں ابھی تھوڑے تو لوگ تھے ہم، میں کہتا یہاں پر سادھو سنیاسی آئیں گے، جگت گرو آئیں گے، فلم والے آئیں گے، تب جبکہ تھوڑے سے لوگ ہم تمہیں بابا کیسے ہیں، ہم اندر سوچتے تھے ہاؤ از پاسبل. ابھی ہم جب پہلی دفعہ آیا 57 میں، اوپر بھی کوئی حال نہیں تھا، وہ ایشو دادی کا جو جگہ تھی وہاں پر بابا مما بیٹھ کے ایڈم اینڈ ایو بیٹھ کے گیان سناتے تھے، کتنا کوئی مکان بھی نہیں تھا، اور بابا کی باتیں سن سن کے ہمیں لگتا تھا بھی بابا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئیں گے وہ آئیں گے، لائن لگے گی، بھیڑ لگے گی، ساری باتیں سچ ہو رہی ہیں، اور کسی کی راجہ بھی کھا رہا ہے، کسی کی دبی رہے گی دھوڑ میں. روز کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہے کہ ارتھکویک آ رہے ہیں، بہت ارتھکویک آ رہے ہیں، ابھی اور آنے والے ہیں، کبھی اتراکھنڈ میں آتا ہے، کبھی نیپال میں آتا ہے، کبھی کہیں آتا ہے، کبھی کہیں آتا ہے، یہ اور بڑھنے ہیں. یہ ہم بتا دیں آپ کو، بابا نے یہ کہا ہوا، دیکھو بچے جو چیز آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ دیکھنے میں نہیں آئے گی، اور جو نہیں دیکھتے ہو وہ دیکھنے میں آئے گی. بھگوان واچ مرلی میں آئے، یہ سنا، یہ ہوگا، ضرور ہوگا. کون بول رہا ہے؟ ستیم شیوم سندرم. آج تک بابا کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی ہے، جو بابا نے کہا تھا سب ہوا، سب چیز ہوئی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور انتم سمے تو بالکل نزدیک آئی ہے. اب دادیوں کو دیکھ رہے ہو، اب اویکت پاٹ دیکھ رہے ہو، ساری سب جو ہے ریلیجس جو ہے وہ بھی فیل ہوتے جا رہے ہیں، وہی کہتے ہیں ہاں جی آپ بھی کچھ کر سکتے ہو، گورنمنٹ بھی کہتی ہے آپ بھی کچھ کر سکتے ہو. تو سوائے اس گیان کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ گیان لوگوں کو ملے گا، دھیرے دھیرے ملے گا. اب کیسے ملے گا؟ بابا بتائے، بابا کرے گا، کیسے کرنا، ہی از دا ڈوئر، وہ کرنے والا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی فاصلہ تو بہت ہے، میں سمجھتا ہوں. تو کیسے پہلی کرما چیز سٹیج کی پہلی پتا کون سی وہ ہے، فرسٹ سٹیج کون سی ہے بتاؤ؟ دیکھو آپ نے کون سی سٹیج، تین چار سٹیجز ہیں، اب کون سی سٹیج آپ نے پار کیا وہ دیکھو. پہلی سٹیج ہے وکرما جیت. سنا بھائی، ابھی ہم براہمنوں سے کوئی وکرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں تو پاس ہوں گے سارے، کیسے ہیں؟ اب تو کوئی وکرم نہیں ہوتا نا، بابا کا ہے وکرم، آپ جانتے ہیں جس میں وکار پرویش ہو وکرم ہے، نو وکرم، ٹھیک ہے بات کے نہیں، ہاتھ کھڑا کرے، بالکل نو وکرم، وکرم سے بالکل کنارہ، نو وکرم، وکرما جیت. اور دوسری سٹیج کون سی ہے بتاؤ؟ دوسری سٹیج ہے وکلپا جیت، نو وکلپ. براہمنوں کے من میں بدھی میں کوئی وکلپ نہیں چاہیے، سن لو. ہمارا یوگ کیا ہے؟ شدھ سنکلپوں کا خزانہ جمع کرنا بھی یوگ ہے. अगर उससे क्या होता है, पॉजिटिव थॉट्स को उससे क्या होती है, आत्मा में पावर आती है और प्योरिटी आती है पॉजिटिव थॉट्स से, जो बाबा ने बताया सिंपल। उस उन विचारों को हम अगर हम रखते हैं, मन में रखते हैं, तो प्योरिटी भी आती है और पावर भी आती है। सत्युग में क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर। ये पॉजिटिव थिंकिंग से आती है, सोच लो, शुद्ध विचारों से आती है। जितना आप शुद्ध विचारों में रमन करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे, उसमें रहेंगे, तो उतना आप प्योर भी बनते जाएंगे और आप में पावर भी आती जाएगी। सुन लो, अगर आपका कोई विकल्प आया, ये ध्यान रखने वाली बात है, विकल्प मीन नेगेटिव थॉट, उल्टा विचार, वो आया तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज, जो आपने योग से, सेवा से, ज्ञान से बैटरी चार्ज की थी, वो नेगेटिव थॉट से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये देखो, अगर बार बार आया नेगेटिव थॉट विकल्प, तो बैटरी डिस्चार्ज, फिर वहीं के वहीं जहां से चले थे। तो ध्यान रखना प्रिय बहनों और भाइयों, ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं, कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। अगर गलती से कोई आ भी जाए तो फौरन भगाओ, डोंट गिव स्पेस इन योर माइंड, मत आने दो, भगाओ उसको, किनारा कर लो, नो नेगेटिव थॉट। इसलिए नेगेटिव शो, नेगेटिव किनारा, यानी विकल्प जीत बन जाना है हमको। अब तो मैं कहता हूं नहीं होगा साहब में, ऐसी बात नहीं, होगा तो बहुत मामूली हटा देना चाहिए। नो विकर्म, नो विकल्प। बाबा को भी आदत है कि मेरे बच्चों में विकल्प भी नहीं है और विकर्म बाप नहीं है, बाबा कहते हैं मुरलियों में। और फिर थर्ड कौन सी चीज है? व्यर्थ अतीत। अब व्यर्थ भी नहीं चाहिए, नो व्यर्थ। व्यर्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज व्यर्थ? जिसका अभी आप बैठे यहां पर, आपको दिल्ली याद आ गया अभी, समझे, बैठे यहां दिल्ली पहुंच गए, तो व्यर्थ है। दादी कहती, दादी गुरदास जी, हम समझते थे व्यर्थ माने क्यों, क्या, कब, कैसे, ये है, ये व्यर्थ है। कहते नहीं, ये तो है ही व्यर्थ है, मोटा मोटा व्यर्थ है। और व्यर्थ भी अभी बैठे यहां पहुंच गए बॉम्बे, तो ये क्या है, ये व्यर्थ है और क्या बात, मन वहां चला गया, यहां बैठे है, कोई ख्याल आ गया अपने बिजनेस का, ये भी व्यर्थ है। व्यर्थ मीन जो कि जिसका अभी अर्थ कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए कि वो व्यर्थ भी ना हो, जिसमें जो संकल्प चाहिए वो संकल्प करना ही तो अर्थ रहता है। अब ऐसी चौथी स्टेज और है, ये तीन स्टेज, चौथी है नो साधारण। साधारण विचार नहीं चाहिए। देखो, हम बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, हमेशा उनका हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष होता था, विशेष, नो साधारण। साधारण में बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, अरे क्या करना साधारण को, एक एक समय, एक एक श्वास, एक एक हमारा संकल्प बहुत कीमती है, संगम जो सारा कीमती है, फिर नहीं मिलने वाला ये, सुना। तो अब साधारण को भी खत्म करना है, विशेष होना चाहिए। विशेष क्या? जो बाबा ने संकल्प दिए वो विशेष है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां का और क्या मुझे बनना है, इन संकल्पों को बुद्धि में रखना और संकल्पों को हटा देना, दैट इज विशेष, दैट इज समर्थ संकल्प। हम तो कोशिश करते हैं कि और संकल्पों को हटाओ, जिसका काम कुछ नहीं है। अभी आप पैदल जाएंगे यहां से, क्या क्या काम है, कोई काम तो नहीं है। संकल्प यही, मैं आत्मा हूं। हम तो कोशिश करते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, मतलब रथी हूं, ये सारा कुछ, ये सब शुद्ध संकल्प है। और आप उसकी फीलिंग आपको आएगी, अनुभूति करते जाएंगे साथ, शरीर तो वस्त्र है, मैं तो पहनने वाला हूं। बाबा ने कितनी हमारी पालना की है, मैं अभी एक वाणी पढ़ रहा था, बिंदु बन बिंदु को याद करो, का ऐसी फीलिंग है कि ये वस्त्र है, मैं इसे न्यारा हूं, ऐसी फीलिंग है, मोड़ के जा रहा हूं सूक्ष्म वतन और मूल वतन में, बाबा के साथ हूं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो शुद्ध संकल्प जो बाबा ने दिए हैं, उन संकल्पों को लाना और साधारण संकल्पों को हटाना, ये यही तो योग है और क्या है। तो ये जो है इसका पुरुषार्थ करना है। बार बार हम एक दफा कह दिया मैं आत्मा हूं, बात होगी ठीक नहीं, आत्मा तो आप आए, बच्चा भी जानता है कि हम आत्मा है। जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, इन चीजों को अगेन एंड अगेन रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक रियलाइज नहीं होगा। वाट इज बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे सुन तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, रिवाइज एंड रिवाइज देन यू वर रियलाइज। ये बाबा अवक्त बाप दादा के माँ वाक्य। और एक और बाबा ये लॉ है, साइंटिफिक मनोवैज्ञानिक लॉ है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, ये पक्का है। अगर आप सोचे, जो आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। देखो बाबा ने मिसाल भी दी थी, एक जो मिसाल दी थी उसकी, एक गांव वाले की, वो अपने गुरु के पास गया कि मुझे मंत्र दो, गांव वाला कोई पढ़ा लिखा था नहीं, उसने मंत्र दिया, कहता ये तो मुझे याद नहीं होगा, कोई सिंपल सी बात बताओ। उसने कई बातें की, उसको कुछ समझ नहीं आया, बहुत ही अनपढ़ था। उसने कहा जो चीज तुम्हें प्यारी है तो उसको याद कर। उसने कहा मुझे तो भैंस प्यारी है। उन्होंने ठीक है, तो भैंस को याद कर। वो जब वो अपने कमरे में बैठा तो भैंस को याद करने लगा। कुछ समय के बाद कहता है, एक दिन के बाद, दो दिन के बाद कहता है मेरे तो सींग आ गए, अब मैं बाहर के अंदर निकलूं कैसे, दरवाजा छोटा है, यानी वही बन गया वो। तो ये मनोवैज्ञानिक लॉ है, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। हम सोचते हैं मैं आत्मा हूं, बार बार इसको रिवाइज करें, बाबा ने भी किया, हम बच्चे भी करें, और चीजों को, संकल्पों को हटाओ, निकालो। और संकल्प ना हो तो हमारा ऐसे खड़े हैं, कोई काम, कोई हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, वेस्ट मरे नथिंग में जा रहा है। चलो मैं कहता हूं विकर्म भी नहीं होंगे, विकल्प भी नहीं होंगे, व्यर्थ भी बहुत कम होगा, लेकिन समर्थ भी नहीं है। वी आर ऑन न्यूट्रल गियर, पेट्रोल जा रहा है समय, और स्कूटर को आपने न्यूट्रल गियर पर खड़ा किया, ना आगे जाते ना पीछे जाते, दैट इज न्यूट्रल, नथिंग। अभी मैं क्या सोच रहे थे आप, नथिंग। हमारा समय नथिंग में बहुत जा रहा है, क्या करना है हमने, नथिंग को समथिंग में तब्दील करना है। यही अगेन एंड अगेन ये सोचिए, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, घर को याद करें, चक्कर को याद करें, अपने पुरुष, अपने लक्ष्य को याद करें। बाबा ने देखो वो 500 रूप बताए थे, याद है आपको 500 रूप, याद, एक निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी, ये 5 स्वरूप बाबा ने बताए थे कि बच्चे सारे दिन में 8 बार इसको याद करो। करते हैं आप लोग ये, जो करते हैं हाथ खड़ा करें, देखो कोई बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, बताओ विनाश कैसे आएगा, जब हम बाबा का काम ही नहीं करते तो विनाश कैसे आएगा, हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो विनाश कैसे आएगा, हमारे पर टिका हुआ है विनाश। तो ये 5 स्वरूपों को भी याद करना बड़ा वंडरफुल है, इसमें चक्कर भी आ जाता है, बाबा भी याद आ गया, अपने लक्ष्य भी याद आ गया, पूज्य स्वरूप भी आ गया, सारे सब सारे सारी बातें, यात्रा भी आ गई, जो यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हम कर्मातीत फरिश्ता बने, तो हम क्या करें, जो गैप है ना, वो गैप उसको आज दृढ़ संकल्प करें। अभी आप यहां पर हैं, कोई काम तो है नहीं आपको ज्यादा, एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प को समर्थ बनाओ अभी से ही। कोई और संकल्प ना है, आत्मा का, बाबा का, घर का, इन ये संकल्प आते रहे, बिंदु रूपों, बिंदु को याद करें, परम धाम में बैठ जाएं, ये शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चलो। ایزی ہے تو ایزی، مشکل تو نہیں ہے، ایزی ہے کہ مشکل ہے، بولو جی، ہے تو ایزی، پرنتو اٹینشن کی بات ہے. بابا کہتا ہے اٹینشن تو ہے نہیں ہمارے میں، لیکن اٹینشن کریں گے تو وہ ٹھیک ہے. اٹینشن یہی، میں کون، میں کس کا دادی، دیکھو جانکی جی آتی ہے دو شبد بول دیے، میں کون اور میرا کون، یہی یاد کرنا ہے. اور کیا، اپنے گھر کو یاد کرو، بابا کو یاد کرو، شدھ سنکلپوں میں رمن کرتے چلو، کرتے چلو، کرتے چلو، تو جو پازیٹو جو ہے ہمارے بچار، اس سے پاور بھی آ جائے گی، پیورٹی بھی آ جائے گی، اور یو ول بیکم ڈبل کراؤن کنگ، اگر آپ یہ پرشارتھ کرتے ہیں تو. یہ اندر کا پرشارتھ ہے. آپ پرشارتھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کرتے ہوں گے، جتنا جتنا زیادہ پرشارتھ کریں گے فرشتے بنتے جائیں گے، کریکٹ وارنٹی ہے. جتنا میکسیمم ایک بھی سیکنڈ ویسٹ نہ جائے، ایک بھی شواس ویسٹ نہ جائے. ساری بات ہے سنکلپ کی، سارا کلپ چلتا ہے سنکلپ سے. میں ایک دن بچار کر رہا تھا کہ سارے کلپ میں مجھے کتنے سنکلپ آئے ہوں گے، 5000 ورش ہوئے ہیں، ایک منٹ میں اگر 10 سنکلپ ہوں تو بچار کرو کتنے ہم نے سنکلپ کی ہوں گے، اور زیادہ بھی کیوں گے، کم بھی کیوں گے اندازن. تو ابھی جو ہے سنگم جو کا ایک ایک سنکلپ میں یہ پازیٹو سنکلپ ہوگا، شدھ سنکلپ ہوگا، تو ہم دیر نہیں، ہم بابا باپ سمان کرماتیت فرشتہ بن جائیں گے. میرا تو بچار یہی مین پرشارتھ ہے، یاد کا یہی یاترا ہے، یہی سب چیز ہے. اس کو کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پرشارتھ، آنترک کرتے رہیں گے، تو باپ سمان جیسے بابا نے کیا، ہم بھی اس سمان فرشتہ بن ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، اوم شانتی، اوم شانتی. بے حد بابا